नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज राष्ट्र ने सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले में 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकी हमले का भारत का मुंह तोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की एक ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने आज लोकभवन में तमिलग वेत्रिकड़गम टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय को आमंत्रित किया। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उधर केरलम में कांग्रेस पार्टी नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में एक रोड शो भी किया। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि अतीत में दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफल से भेंट की। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि दोनों नेताओं ने श्रमिक कल्याण और रोजगार के लिए सशक्त डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण के लिए सहयोग पर सार्थक चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 5वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 55 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।